हरे कृष्णा। तो आज हम वेणुगीत के अध्याय के आखिरी श्लोक के बारे में चर्चा आज करेंगे। श्लोक संख्या 20। ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, गोपियों ने 13 श्लोक कही थी श्री कृष्ण के बांसुरी बजाने से वृंदावन के निवासियों के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसका वर्णन गोपियां आपस में कर रही थी। गोपियां भाव विभोर होकर ऐसी बात कर रही थीं कि कोई अगर भौतिक व्यक्ति जो भक्ति के सूक्ष्म तत्वों से परिचित नहीं है, वो कहता कि ये तो पागल है। इसलिए इस पागलपन का वर्णन अब इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। एवं इस तरह से विधु आप जान लीजिए कि भगवतः यानी भगवान वृंदावन चारिणः ऐसे विचरण कर रहे थे वृंदावन के अनेक वनों में। वर्णयन्त्यः वर्णन कर रहे थे कौन, गोप्यः किसको, मिथः परस्पर आपस में, क्रीडाः तन मयताम ययुः। तो भगवान श्री कृष्ण विचरण करते करते क्या कर रहे थे, क्रीडाः लीला। तो इन लीलाओं का वर्णन आपस में गोपियां कर रही हैं। तन मयताम ययुः इस प्रकार से तन्मय हो गए। तन मयताम तन्मय पूरी तरह से इसमें मग्न हो गए। चिन्मय जैसे आध्यात्मिक जगत को चिन्मय कहते हैं, चित शक्ति से पूर्ण है, उसी प्रकार से ये भौतिक जगत है गुणीमयी गुणमयी गुणों से, तीन गुणों से युक्त। उसी प्रकार से गोपियां क्या हो गई हैं, कृष्ण की क्रीड़ाओं में तन्मय हो गई हैं। तन्मयताम ययुः इस स्थान को, इस तन्मय स्थान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार गोपियां सर्वश्रेष्ठ स्तर पर हैं आध्यात्मिक जीवन के, क्योंकि इन्होंने तन्मय अवस्था को प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के बारे में सतत स्मरण करना, अगर वो चाहते भी तो भगवान श्री कृष्ण को भूल नहीं सकते, ये उनकी दशा है। ये वास्तव में आध्यात्मिक जीवन की परिपूर्णता है। इस स्थिति को प्राप्त करना जब हम सदैव भगवान का स्मरण कर सकें। स्मर्तव्यः सततम् विष्णुः विस्मर्तव्यो न जातुचित् सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोर एव किंकराः। शास्त्र में बताया हुआ है कि इतने सारे विधि विधान बताए हुए हैं धर्मशास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में, इनकी गणना नहीं की जा सकती, इतने विधि विधान है, विधि निषेध। लेकिन इन सारे विधि निषेधों का उद्देश्य क्या है, अंततः इनका सार क्या है, किस लिए ये सब विधि निषेध दिए गए हैं, किस लिए ये सब बंधन मनुष्य के ऊपर, पशु के लिए नहीं है केवल मनुष्य के लिए, क्यों, ताकि वो इस स्थिति को प्राप्त करे। किस स्थिति को, सततम स्मर्तव्यः विष्णुः कि हमेशा भगवान का स्मरण करे। विस्मर्तव्यः न जातुचित किसी भी समय भगवान को भूले नहीं। तो 24 घंटे भगवान का स्मरण करना और कभी भी भगवान को नहीं भूलना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही हमारे सारे विधि निषेधों का उद्देश्य है। भगवान कृष्ण भी गीता में हमारे मानसिक स्थिति के महत्व का वर्णन करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है, जनसाधारण इसको नहीं समझती कि हमारे मन में जो हम विचार कर रहे हैं इसका क्या महत्व है। इसके बारे में लोग पर्याप्त रूप से चिंतन नहीं करते। जैसे हम कार्य करते हैं वैसे चिंतन करेंगे, जैसे चिंतन करते हैं वैसे कार्य करेंगे, और मृत्यु के समय जो हमारे मन की स्थिति होगी उस हिसाब से हमें अगला शरीर मिलेगा। तो हमारी जो मानसिक स्थिति है मृत्यु के समय, वो सूक्ष्म रूप से हमारे आने वाले स्थूल शरीर की तैयारी करती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत पापी है और उसके पापों के फलस्वरूप उसको एक पशु का शरीर धारण करना है अगले जन्म में, तो मृत्यु के समय उसका सूक्ष्म शरीर जो कि पशु की तरह विचार करने से एक प्रकार की वृत्ति जिसमें आ गई है, वही सूक्ष्म विचार जो है अभी उस पशु की तैयारी करने लगेंगे, और मृत्यु के समय इस पापी व्यक्ति को इस सूक्ष्म देह का दर्शन होगा, उसे झलक मिल जाएगा कि मैं अब इस तरह की योनि में प्रवेश करने वाला हूं, ये मेरी गति है अभी। तो जैसे हम स्मरण करते हैं मृत्यु के समय, जैसे विचार के द्वारा हमारी मानसिक स्थिति को हम बना लेते हैं, वैसे हमारी गति होगी, हमारी दशा होगी अगले जन्म में। तो इस प्रकार से पुनर्जन्म की जो विधि है, जो नियम है, जो प्रकृति के कड़क नियमों के अनुसार होता है, ये बहुत सूक्ष्म बात है, और हर एक व्यक्ति को इसको समझना चाहिए कि हमारे मन को नियंत्रित करके कैसे सही तरह के विचारों को मन में लाएं, ये अति महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर अकस्मात मृत्यु के समय मन कहीं और चले जाए, तो फिर क्या होगा? जिस विषय के ऊपर हमारा मन चला गया अकस्मात उस समय, वैसे गति हमें प्राप्त करना होगा। भरत महाराज जैसे व्यक्ति जो कि इतने आगे बढ़े हुए थे भक्ति मार्ग में, लेकिन ऐन वक्त पर एक हिरण से आसक्त हो गए और उसकी वजह से वो अपने वांछित गति से दूर हो गए, पथ भ्रष्ट हो गए, और उनको एक हिरण का शरीर धारण करना पड़ा। इसलिए हमारे मन के विचारों को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, किस दिशा में हमारे मन के विचारों को ले जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसलिए सारे शास्त्र में यही बताया हुआ है कि कैसे हमें मन को वश में करना है, कैसे हमारी साधना से मन को अंततः नियंत्रण करना है। हम एक दो दिन पहले इस कथा के दौरान रूप गोस्वामी के उपदेशामृत के एक श्लोक का वर्णन कर रहे थे। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। रूप गोस्वामी भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, गोलोक वृंदावन में वो रूप मंजरी हैं, गोपी हैं गोलोक वृंदावन में, वो सारे तत्वों को जानते हैं, और उन्होंने सारे उपदेश का सार हमें दिया है कि हमें सतत भगवान श्री कृष्ण के नाम, उनकी लीला, रूप, गुण आदि के बारे में श्रवण कीर्तन करते रहना है, जिससे कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी, जिससे कि हमारा स्मरण हमेशा कृष्ण के बारे में हो सकेगा। तो उसी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका से वो कोट करते हैं, उसे प्रमाण के तौर से प्रस्तुत करते हैं कि कैसे वास्तव में व्यक्ति या साधक की प्रगति होती है इस आध्यात्मिक जीवन में, इस भक्ति जीवन में। कैसे हम आध्यात्मिक जीवन आरंभ करते हैं और क्रमशः प्रगति करते करते कैसे करते करते हम इस भक्ति के उच्चतम श्रेणी तक हम पहुंच जाते हैं। तो इसका वर्णन हमने यहां इस चार्ट के ऊपर दिया हुआ है, तो कृपया इसे ध्यान से आप सुनिएगा, और जो चाहें इसको आप ध्यान से नोट भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी उपदेश अमृत के तात्पर्य में इसको देते हैं, केवल हमने चार्ट के रूप में उसको यहां प्रस्तुत किया है। उपदेश अमृत ग्रंथ जो है वो सबके लिए है, ऐसा नहीं कि केवल जो बहुत ही आगे बढ़े हुए भक्त हैं उनके लिए है, बल्कि उपदेश अमृत एक ऐसा ग्रंथ है जो कि जो पहली बार इस्कॉन में आता है उसको दिया जाता है कि आप पढ़िए इस ग्रंथ को। तो सरल से सरल है, प्राथमिक ज्ञान है। और ऐसे पुस्तक में प्रभुपाद जी जो हैं इस क्रमशः इस क्रम का वर्णन कर रहे हैं। तो शुरुआत होती है सबसे नीचे श्रवण दशा, अलग अलग दशाओं का वर्णन करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। देखिए, हम जबकि श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे हैं तो हमें इसके पीछे जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसे भी हमें ध्यान से समझना चाहिए। ये एक बुनियाद है, आधार है, जिसके ऊपर अगर हम लीला सुनेंगे तो सही तरह से लीलाओं को समझ पाएंगे और सही रस का आस्वादन कर पाएंगे। नहीं तो हमेशा खतरा रहता है कि लीलाओं को हम गलत समझेंगे या श्रद्धापूर्वक भी सुनेंगे लेकिन भावुकता से सुनेंगे। इसलिए बार बार हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य बताते हैं, लीला भी सुनो, फिलॉसफी या दर्शन भी सुनो, दोनों साथ साथ सुनने चाहिए, जिससे कि हमारी प्रगति बड़े अच्छे ढंग से होगी। साधारणतः लोग इस श्रवण दशा में भी नहीं होते हैं। श्रवण दशा मतलब क्या है कि व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भक्तों के संग में आता है और कृष्ण के बारे में सुनता है, शास्त्रों के उपदेशों को सुनता है। कितने लोग ऐसे हैं सारे समाज में जिनको बिल्कुल कोई रुचि नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे अवस्था में हैं, माया के चंगुल में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, माया जाल में अटक कर रहे हैं। उनको न तो कोई समय है श्रवण करने के लिए भगवान के बारे में, न कोई इच्छा है। तो ऐसे लोगों की दशा क्या होगी ये तो वो जाने और माया जाने। लेकिन जब व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, बल्कि भाग्यशाली हो जाता है, तो भगवान के भक्तों के संग में आता है, श्रवण दशा उसकी आरंभ हो जाती है। और ऐसे अवस्था में वो शास्त्रों के अंदर जो भी ज्ञान दिया हुआ है कि भगवान कौन है, ये भौतिक सृष्टि क्या है, ये भौतिक सृष्टि के अंदर सुख दुख क्या चीज है, भगवान का नाम क्या है, ये सब सुनने लगता है। और जैसे जैसे सुनता है, अगर वो सतत ऐसे करता गया, अगर इसमें प्रामाणिक तौर से वो श्रवण करता गया तो आगे प्रगति करेगा। अगर उसने सही तरह से श्रवण नहीं किया भक्तों के संग में, नियमित रूप से अगर बार बार आता नहीं आता रहा वो व्यक्ति, तो फिर यहीं से वो भक्ति छोड़ देगा या उसकी प्रगति बहुत धीमी होगी। लेकिन जैसे जैसे वो श्रवण करता रहेगा, नित्यम भागवत सेवया, ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में आना, ये भक्तों के संग में आकर सुनना ये बहुत ही शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए जो व्यक्ति बारंबार आएगा भक्तों के संग में सुनने के लिए, श्रवण करने से, ये कान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी कहते हैं भागवत में, भगवान को आंखों से देखने का प्रयत्न नहीं करो, भगवान को कानों से देखने का प्रयत्न करो। तो ये है श्रवण दशा। तो जैसे व्यक्ति सिंसियरली हृदय से श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, धीरे धीरे इस पद को स्वीकार करता है, थोड़ी निष्ठा आ जाती है उसके चित्त में, थोड़ी रुचि जागृत हो जाती है इसके लिए, अब वो संकल्प करता है मैं इस पद को स्वीकार करूंगा, दृढ़ता से मैं स्वीकार करूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, रस आने लगता है इसमें। जब वो व्यक्ति इस प्रकार से इसको दृढ़ता से स्वीकार करता है, संकल्प से, व्रत से, कि मैं अब श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, बल्कि उनके दासों का दास हूं, फिक्स हो जाता है, बिल्कुल पक्का हो जाता है उसमें, अब माया के चक्कर में पड़ता नहीं है। कोई भी लोग उसको पथ भ्रष्ट करने का प्रयास करें, मजाक उड़ाएं, कुछ भी करें, फिर भी वो अटल रहता है। इसको वर्ण दशा कहते हैं। वर्ण दशा मतलब जबकि वो इस श्रवण कीर्तन के पथ को दृढ़ता से, संकल्प से स्वीकार करता है। अब काफी प्रगति कर चुका है भक्त। जब श्रवण दशा ही इतनी दुर्लभ है तो वर्ण दशा तो हम समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। तो वर्ण दशा प्राप्त करने के बाद, जबकि श्रवण कीर्तन में भक्त अधिक से अधिक प्रगति करता है, थोड़ी बहुत निपुणता आने लगती है, क्योंकि अब रस आ रहा है थोड़ा बहुत, अधिक नहीं लेकिन थोड़ा तो आ रहा है रस, फिर धीरे धीरे से उसको स्मरण करने की आदत हो जाती है, भगवान के बारे में स्मरण करने लगता है, इसको स्मरण दशा कहते हैं। स्मरण दशा के भी कई स्तर हैं, लेकिन देखिए स्मरण भी किसके ऊपर आधारित है, श्रवण और वरण। जब तक व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा और कीर्तन नहीं करेगा तब तक वो स्मरण नहीं कर पाएगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा मन जो है हमारे कानों और मुंह के बीच में है, तो मन को वहीं पर हमें पकड़ कर रखना है, ट्रैप कर लेना है। तो जैसे हम श्रवण कीर्तन करेंगे वैसे हमारा स्मरण होगा, बहुत सीधी सी बात है। तो स्मरण दशा की पहली अवस्था है स्मरण। स्मरण मतलब जब भक्त स्मरण करना आरंभ करता है, और कभी कभी उसको मन में कृष्ण का विचार आता है, जब भी करने बैठता है मन को नाम के ऊपर केंद्रित करने का प्रयत्न करता है, एक दो क्षण तीन पांच क्षण केंद्रित करता भी है, लेकिन अचानक न जाने कहां से वो कंबक बुरा विचार आ जाता है, या बुरा विचार भी नहीं, कोई भी विचार जिसका कोई भगवान से कोई संबंध नहीं, अचानक अरे कल उस व्यक्ति को मुझे ये देना था, किताब देना था, मैं भूल गया, आज देना चाहिए, हाँ, या कोई और विचार आ गया, ऐसे अनेक विचार आने लगते हैं, अचानक कहां से चले आते हैं किसी को कुछ पता नहीं, कोई कारण नहीं लगता हमें इसके लिए, लेकिन चले आता है, फिर हमारा मन उस दिशा में चले जाता है, भगवान के ऊपर जो एक दो क्षणों के लिए हमने मन केंद्रित किया था वो बस वहां से हम दूर चले जाते हैं, फिर हम सोचते हैं अरे मेरा मन कहां चला गया। जो सिंसियर भक्त है, जो सिंसियर साधक है, जो वास्तव में गंभीर है इस मार्ग में प्रगति करने के लिए, वो सोचता है नहीं नहीं ठीक करना चाहिए अपने आप को, चलो मन इधर उधर जा रहा है तो फिर से मन को खींच के लाता है। लेकिन जो भक्त कमजोर है, जिसका संकल्प इतना दृढ़ नहीं है, वो हार मान लेता है, फिर उसी मन के रथ के ऊपर बैठकर भ्रमण करता है, बैठे बैठे माला हाथ में लिए हैं, लेकिन मन के रथ पे सवार होकर अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है, यहां वहां सब जगह घूमते रहता है, सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करता है, काल में भी भ्रमण करता है और देश के हिसाब से भी, स्थान के हिसाब से भी भ्रमण करता है। काल में भ्रमण करना मतलब कल क्या हुआ, कल ऐसा हुआ, कल ऐसा करना चाहिए था लेकिन मैंने गलती की, उसको ऐसा बोलना चाहिए था, तो काल के हिसाब से भी कल मैं ऐसे करूंगा फिर ऐसे होगा तो परसों ये दशा मेरी हो जाएगी, तो काल में भी और स्थान में भी दोनों में भ्रमण करते रहता है मन। तो अगर उस समय हम सतर्क नहीं रहे तो क्या होगा, हम ये मन के रथ के ऊपर चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, सब जगह भ्रमण करते रहेंगे। लेकिन भक्त को चाहिए कि इसको वश में करे। जब भक्त ऐसे अपने आप को नियंत्रित नहीं करता तो क्या होता है कि अभी वो कृष्ण के शरण में आने लगा है, जप करने लगा है, लेकिन ध्यान से नहीं करता तो भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपालु है, उसको थोड़ा धक्का दे देते हैं, अरे हाँ अभी मेरे को जाप करना चाहिए। जब जीवन में कुछ खटका हो जाता है उसको तो फिर से वो सोचते नहीं, मुझे ध्यान से जाप करना चाहिए, तो भगवान उसको धीरे धीरे से कभी कभी हल्का सा थप्पड़ मार देते हैं, चलो ध्यान से करो करो, फिर उसको शरण लेने के लिए और प्रेरित करते हैं। फिर जब वो ऐसे प्रयत्न करता है तीव्रता से, कष्ट होता है उसको लेकिन करता है, तब धारण के स्तर में आ जाता है धारणा। इनमें से कई स्तर जो है अष्टांग योग की पद्धति में आपने सुने होंगे, लेकिन ये भी भक्तिमय हो गए हैं। तो धारणा के स्तर में क्या होता है कि व्यक्ति अब ज्यादा स्मरण कर पा रहा है पहले के हिसाब से, और थोड़ी परिपक्वता प्राप्त कर ली है उसने, ज्यादा समय अपने ध्यान को वहां केंद्रित करता है और थोड़ा उसको अच्छा भी लगता है कि ये पथ अच्छा है, अभी अभ्यास हो जाता है और प्रगति करता है। जब उसकी धारणा भी और आगे बढ़ जाती है तो ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है, और ध्यान की स्थिति में वो अपने मन को काफी देर तक भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप इत्यादि के ऊपर केंद्रित कर सकता है, जबकि धारणा में उसे एक साधारण थोड़े समय के लिए मन को केंद्रित कर सकता था, अब वो ज्यादा समय के लिए केंद्रित कर पा रहा है। फिर ध्यान से आगे अनुस्मृति, मतलब बार बार स्मरण करना, बार बार ध्यान करना, और भी लंबा हो जाता है उसका स्मरण, और इस समय किसी विशेष भगवान की लीला या रूप के ऊपर मन को केंद्रित करने के लिए सक्षम हो जाता है। ध्यान की अवस्था में वो एक सर्वसाधारण रीति से स्मरण करता है, लेकिन यहां किसी विशेष नाम रूप इत्यादि के ऊपर उसका मन केंद्रित कर करने में वो सार्थक हो जाता है। और ऐसा करते करते फिर अंततः वो समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। समाधि मतलब पूरे तल्लीन हो जाता है उसमें, 24 घंटे उस स्मरण में रह जाता है। वैसे अनुस्मृति की अवस्था में भी वो भाव की अवस्था में आ जाता है और बहुत तीव्रता से उसको इतना रस आ जाता है इस भक्ति में कि अब वो छोड़ने की इच्छा नहीं रखता। अनुस्मृति की अवस्था में उसका हृदय जो है वो भाव से भर जाता है और ऐसे उसके भाव के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, कभी आंसू भी आने लगते हैं, कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस प्रकार से तरह तरह के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और आगे जब समाधि की अवस्था आती है तो ये स्मृति कभी बंद नहीं होती, ये बढ़ते रहता है। और ये स्मरण का अंतिम स्तर है, सबसे ऊंचा परिपक्व स्तर है। और इस समय भगवान के दिव्य शक्ति के प्रभाव के नीचे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण करता है, बिना उसके प्रयास किए हुए उसका भगवत स्मरण होता है। जबकि स्मरण दशा में, धारण दशा में, ध्यान दशा में भी उसको प्रयत्न करना पड़ता है स्मरण करने के लिए, और महामाया शक्ति जो है उसके स्मरण को नष्ट करने का प्रयत्न करती है। लेकिन जब समाधि की अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है तो उस समय स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण करता है व्यक्ति, अब कोई भी उसके स्मरण से उसको भ्रष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो पूरी तरह से भगवान के दिव्य शक्ति के अधीन हो गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में मेरा महात्मा है वो ऐसे ही मेरे दिव्य शक्ति का आश्रय लेता है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः अनन्य भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य मनसो मतलब एकाग्र चित्त से, मन कभी इधर उधर नहीं जाता। भजन्ति अनन्य मनसो, मेरा भजन करता है, स्मरण करता है। और इस प्रकार से व्यक्ति समाधि के स्तर में पहुंच जाता है। समाधि के स्तर में पहुंचने के बाद भी अब और भी आगे उसे बढ़ना है। सारे भौतिक कलमश जो हैं, जो इस जगत में इतने सारे जन्म लेने के बाद एक तरह का लगाव हो चुका होता है इस भौतिक जगत के साथ, इस शरीर के साथ, और कई गलत धारणाएं मन में होती हैं इस भौतिक संबंध की वजह से, इन सारे चीजों को भक्त जो होता है चौथे स्तर में आपन दशा में उसको त्याग देता है। अब पूरी तरह से वो अपने आध्यात्मिक स्तर में स्थित है, जिसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं। स्वरूप सिद्धि मतलब ये जान लेना कि मैं भगवान के धाम में मेरे आध्यात्मिक रूप में कौन हूं, क्या हूं, भगवान की लीला में मैं कौन हूं, गोलोक वृंदावन में मेरा मूल स्थान कहां है, जब मैं भगवान के धाम में लौटकर जाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। और ऐसे भाव विभोर अवस्था में वो व्यक्ति अपने भौतिक शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, हमेशा अपने मन ही मन में वृंदावन में राधा कृष्ण का के संग में रहता है, उनके सानिध्य में रहता है। और ये आपन मतलब हम जब इस स्मरण को अपने आप में समेट लेते हैं, सम्मिलित, एसिमिलेट, सब पूरी तरह से सम्मिलित कर लेते हैं, आपन दशा। लेकिन फिर भी वो यहां पर इस भौतिक जगत में है, उसका एक शरीर है। लेकिन जब अंतिम अवस्था की प्राप्ति होती है, जो कि संपत्ति दशा है, उस समय श्री कृष्ण इस व्यक्ति के ऊपर, भक्त के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, उसके शरीर को भी उससे छीन लेते हैं और उसको अपने धाम में ले जाते हैं, गोलोक वृंदावन में। इसको वस्तु सिद्धि कहते हैं। स्वरूप सिद्धि में और वस्तु सिद्धि में वैसे कोई अंतर नहीं है, मानसिक दृष्टि से एक ही है, परंतु फर्क इतना ही है कि स्वरूप सिद्धि प्राप्त करके जब व्यक्ति आपन दशा में होता है वो भौतिक जगत में स्थित होता है शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि में गोलोक में है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से वो यहां पर भौतिक जगत में है। और जब संपत्ति दशा को प्राप्त हो जाता है तो भौतिक जगत को छोड़कर अब वो गोलोक वृंदावन में भगवान के धाम में अपने आप को स्थित करा देता है। यह है हमारे जीवन की अंतिम परिपूर्णता, इससे ऊंचा कोई और स्थान नहीं है। फिर व्यक्ति गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है और भगवान उसका स्वागत करते हैं गोलोक वृंदावन में। एक दो साल पहले आपको याद होगा वो तस्वीर दिखाई थी, गोप कुमार वापस चले गए हैं गोलोक वृंदावन और श्री कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं। जब हर एक जीव गोलोक वृंदावन में लौट के जाता है तो श्री कृष्ण स्वागत करते हैं व्यक्तिगत रूप से। श्री कृष्ण हर एक जीव को जानते हैं, हर एक का नाम जानते हैं, हर एक को पहचानते हैं और श्री कृष्ण उस जीव को स्वागत करते हैं और आपस दोनों आलिंगन करते हैं। कहते हैं कितना समय बीत गया, तुम छूट गए, तुम्हें कितना स्मरण कर रहा था तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम मेरे माया में तुम फंस गए थे, अब तुम मेरे पास लौट कर आ गए। और दोनों एक दूसरे को अपने आंसुओं से नहलाते हैं और फिर वो भक्त प्रार्थना करता है कि मुझे आपके नित्य लीला में आप एक स्थान दीजिए, मैं आपके नित्य आपके चरण कमलों में रहना चाहता हूं। फिर श्री कृष्ण उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से अपने सनातन स्थान में वो स्थित हो जाता है भक्त। तो हम कौन सी दशा में हैं? श्रवण दशा। श्रवण दशा से अभी भी हमें आगे चलना है वर्ण दशा में, वर्ण दशा से और आगे, और निष्ठा लानी है हमारे श्रवण में, हमारे कीर्तन में, हमारे भजन में। लेकिन गोपियां देखिए, गोपियां तो बहुत ऊंचे स्तर को प्राप्त कर चुकी हैं। आप तो जानते हैं कि इन गोपियों में से कई गोपियां ऐसे हैं जो कि नित्य सिद्ध हैं, मतलब भगवान के साथ ही गोलोक वृंदावन से आई हैं यहां पर, तो उनके लिए कोई साधना करने का सवाल ही नहीं उठता। साधना किसको करना चाहिए? जो व्यक्ति यह भौतिक जगत में है, जिसका उद्धार होना है, जिसका शुद्धिकरण होना है, धीरे धीरे क्रमशः उसकी प्रगति होती रहती है, इनको साधना सिद्ध कहते हैं। तो ऐसे जो साधना सिद्ध गोपियां जो कि पूर्व जन्मों में ऋषि मुनि थे दंडकारण्य में इत्यादि, उनको यह स्थान मिल गया ब्रजवासी बनने का, कृष्ण की लीलाओं में शामिल होने का। तो जब नित्य सिद्ध गोपियों के संग में उन्होंने कृष्ण की सेवा की, कृष्ण की लीला में भाग लिया, तो वो भी अब गोलोक वृंदावन में जाने के लिए तैयार हो गए। तो जितने भी गोपियां हैं जो ये सब वेणुगीत बोल रही हैं, ये मिश्र दल है, तरह तरह की गोपियां हैं। इनमें से थोड़े नित्य सिद्ध हैं, थोड़े साधना सिद्ध हैं, सब मिले हुए हैं। जो नित्य सिद्ध हैं वो प्रशिक्षण दे रहे हैं साधना सिद्धों को कि देखो वहां पर ऐसे करना होता है। तो इसके लिए उनके प्रशिक्षण उनके हाथों के नीचे जब वो सेवा करते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि वहां जाकर मुझे क्या करना होगा। तो ये स्मरण की अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है? केवल अगर बैठ के हम सोचें कृष्ण का स्मरण करेंगे, नहीं हो पाएगा, और खास करके इस कलयुग में तो बहुत कठिन है। इसलिए कलयुग का युग धर्म है भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के गुणों का कीर्तन, ये कलयुग का युग धर्म है। तो हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना है, नाम से सब कुछ आ जाएगा। भगवान का नाम का जप और कीर्तन का हमें सतत करते रहना चाहिए। जब हम जप करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारा जप हम उच्चारण स्पष्ट करें, हर एक शब्द का उच्चारण करें, किसी शब्द को निगल न लें और हर एक शब्द को बड़े प्रेम से उच्चारण करें, बड़े ध्यान से इसका श्रवण करें। हमें बहुत गंभीर होना है भक्ति मार्ग में, और गंभीर होने का मतलब है कि भक्ति के हर एक अंग के बारे में हमें गंभीर होना है। जितने कम से कम माला बताए गए हैं उतने कम से कम माला हमको करने चाहिए, लेकिन केवल करना है इसके लिए नहीं, पूरी तरह से हमें हमको याद रखना चाहिए कि हमें कहां जाना है, हम किधर हैं, हमको कहां जाना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। भले अभी संपत्ति दशा हमसे बहुत दूर हो, परंतु अगर हमने अब से गंभीरता से प्रयास नहीं किया तो हम पहुंचेंगे कैसे? और दुनिया की तुलना से कम हम यहां तो हैं श्रवण दशा में, कितना सौभाग्य है हमारा। इस सौभाग्य का पूरा पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए। ये मनुष्य देह भगवान का देन है, अनमोल देन है, और इसलिए हमारे जप को हमें इतनी अच्छी तरह से करना चाहिए, ध्यान से प्रेम से करना चाहिए, बीच में सोना नहीं चाहिए, बड़े आनंद से करना चाहिए। और इस तरह से हमारे जप में फिर रस आने लगेगा, हमको अच्छा लगेगा। और साथ साथ चैतन्य महाप्रभु ने हमें कहा है नाम संकीर्तन करना है। भक्तों के संग में आके कीर्तन करते करते रहने से हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, न जानते हुए भी शुद्धिकरण होता है। संकीर्तन से मन भटकने की कम संभावना होती है। जप में व्यक्ति सो जाता है, लेकिन संकीर्तन करते करते तो आज तक हमने किसी व्यक्ति को सोते हुए नहीं देखा है। कई बार लोग कहते हैं कि आप लोग नृत्य क्यों करते हैं। ठीक है, हम समझते हैं, भजन करो, भगवान का नाम लो, ये नृत्य करना किसके लिए है? क्योंकि सवाल तो ये है, जवाब उत्तर तो ये है कि नहीं करेंगे तो सब सो जाएंगे। क्योंकि कलयुग में लोगों की ये मानसिक दशा है, इतना तमोगुण का प्रभाव है, बस माला हाथ में ले लिया, किताब हाथ में ले लिया कि सो गए। ये सत्य है, ये कलयुग के लोगों की दशा है। लेकिन संकीर्तन करते समय बड़े उत्साह से अगर हम करेंगे, नृत्य करते करते भाव से करेंगे, तो इसे बहुत लाभ हो जाएगा। इसे संकीर्तन भी करते हैं तो उत्साह से करना है, जहां तक शरीर हमारा साथ दे हमें करना चाहिए उत्साह से। तो जब हम ऐसे नाम का आश्रय लेंगे तो धीरे धीरे से प्रगति होती जाएगी। हमारे लिए बांसुरी की ध्वनि भगवान का नाम है। वृंदावन के निवासियों की तरह प्रत्यक्ष रूप से हम बांसुरी की ध्वनि नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम में और बांसुरी की ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए अगर हमने भी भगवान का नाम का आश्रय उसी तरह से लिया कि जैसे वृंदावन के निवासियों ने बांसुरी की ध्वनि का आश्रय लिया, तो हमें भी वो गति प्राप्त हो सकती है जो कि वृंदावन के निवासियों को प्राप्त हुई। कोई फर्क नहीं। गोपियां और अन्य ब्रजवासी वो भाव सिंधु में बिल्कुल आराम से, आनंद से झूम रहे थे। भाव सिंधु, भक्ति के भाव का सागर। और यहां हम सब हैं भव सिंधु में। इस भव सिंधु में और भाव सिंधु में बहुत अंतर है। भव सिंधु मतलब क्या है? जिसमें हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार बूढ़ा होना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बार बार रोग आना पड़ता है शरीर में, यह है भव सिंधु, भव सागर। लेकिन ब्रजवासी है भाव सिंधु में, तो हमें भव सिंधु से निकलकर भाव सिंधु में जाना है, और ये नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर संभव हो पाएगा। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, फिर से वो बोर्ड लगाएंगे आप ये निकालकर, वृंदावन चारिण, कि श्री कृष्ण वृंदावन में विचरण करते हुए क्रीड़ा कर रहे हैं। अब ऐसी क्रीड़ाएं श्री कृष्ण वृंदावन में करते हैं जो इस भौतिक जगत की बात तो दूर है, लेकिन वैकुंठ जगत में भी ऐसे क्रीड़ाएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के माखन चोरी करना, उनकी रास लीला करना, उनकी माता उनके पीछे पीछे भाग रही हैं छड़ी लेकर, और श्री कृष्ण रो रहे हैं, डर गए हैं, या श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे को अपने कंधे में ले रहे हैं, ऐसी क्रीड़ाएं केवल वृंदावन में पाई जाती हैं। वैकुंठ जगत में इतने सारे अनगिनत वैकुंठ लोक हैं, जिसमें भगवान अपने विस्तार में चतुर्भुज नारायण रूप में विराजे हैं। वहां भी उनके अनगिनत भक्त हैं उनके साथ, जो उनकी प्रेममयी सेवा कर रहे हैं, परंतु वहां कभी ऐसी लीलाएं नहीं दिखाई पड़ती। ऐसी लीलाओं के बारे में वहां के भक्त सोच भी नहीं सकते कि हमारे आराध्य नारायण ऐसी लीला करेंगे, कभी नहीं सोच सकते वो। ये केवल वृंदावन की बात है, क्योंकि वृंदावन में ये माधुर्य है, बल्कि वैकुंठ में ऐश्वर्य है। इसके बारे में कई बार आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, ये माधुर्य ऐश्वर्य चर्चा होती रहती है, लेकिन आज थोड़ा और विस्तार में और स्पष्टीकरण इसके बारे में करेंगे, क्योंकि ये हमारे व्रज लीला के रस को पाने के लिए बहुत आवश्यक है। ऐश्वर्य मतलब क्या है? जब भगवान अपनी लीलाओं में अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, अपनी विशेष भगवत शक्ति को प्रकट करते हैं, तब वो ऐश्वर्य कहलाता है। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे, पौगंड रूप में थे, एक कोमल नन्हे मुन्ने बच्चे के रूप में थे, उन्होंने कई असुरों का वध किया, जो कि बड़े भयंकर थे, बड़े शक्तिशाली थे, भीषण शक्ति थी उनकी। और साधारणतः या असाधारणतः भी कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी, इंसान भी ऐसे असुरों को नहीं मार पाता था, लेकिन श्री कृष्ण ने आसानी से उनको मार दिया। जिसे पूतना राक्षसी जब आई एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके, क्योंकि ये जो असुर होते हैं ये अपना रूप बदल सकते हैं, राक्षस लोग, तो पूतना एक स्त्री का, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और मां के भाव में स्तनपान कराना चाहती थी पूतना, लेकिन अपने स्तनों पर विष का लेप लगाए हुआ था। पूतना की योजना थी कि कृष्ण दुग्धपान करेगा और फिर मर जाएगा, परंतु ठीक विपरीत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भाव स्वीकार किया, माता का भाव, स्तनपान करना शुरू किया, लेकिन प्राण ही खींच दिए, और इतनी शक्ति से खींच दिए प्राण कि पूतना को ये रूप जो है धारण करने की शक्ति रही नहीं। अपना मूल स्वरूप पूतना ने धारण किया, जो 8 मील लंबा था, एक राक्षसी का शरीर। और जब पूतना गिर पड़ी शरीर पे, धड़ाम से बहुत जोर से आवाज आया, तो सारे ब्रजवासी बाहर गए खेतों में देखने के लिए क्या हो गया। और जब उन्होंने राक्षसी का शरीर देखा इतना बड़ा सा, तो सब घबरा गए। तुरंत सब लोग सोचने लगे कृष्ण कहाँ है। फिर कृष्ण को इधर उधर ढूंढा, दिखे नहीं। फिर आखिर में कृष्ण दिखे कि पूतना के स्तनों के ऊपर थे। पूतना 8 मील लंबी थी और वो ऊपर वहां कृष्ण हैं, आराम से खेल रहे हैं, जैसे एक साधारण बच्चा है, इधर ही खेल रहा है, जैसे कि मानो कुछ भी नहीं हुआ। तो यह है ऐश्वर्य का प्रदर्शन। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने शकटासुर का वध किया। शकट मतलब एक रथ, कार्ट, और उसके नीचे बैठकर अपने नन्हे से, छोटे से, नाजुक कर कमलों से, अपने चरण कमलों से उन्होंने लात मार दी। स्पर्श मात्र किया, लात तो क्या, केवल स्पर्श किया, और स्पर्श से वो भारी शकट जो है, जिसके अंदर बहुत सारे बर्तन वगैरह भरे हुए थे, वो गिर पड़ा। और इतने जोर से आवाज आ गया, सब जगह बर्तनों का इधर उधर गिर जाना, सब लोग भाग के चले आए, क्या हो गया। तो बच्चों ने कहा कि इस बाल कृष्ण ने लात मार दी इस शकट को। तो ब्रजवासियों ने सोचा ये तो बकवास है, इतना बड़ा जो शक्तिशाली शकट है, इसको एक छोटा सा बच्चा क्या तोड़ सकता है। ये भी ऐश्वर्य का प्रदर्शन, क्योंकि साधारण ऐसे बच्चा कभी नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से हर एक असुर का जो वध श्री कृष्ण ने किया वृंदावन में, या कहां भी, कहीं भी हो, वो ऐश्वर्य का प्रदर्शन है। और यहां पर एक प्रकार का रसाभास लगता है, क्योंकि कृष्ण एक नाजुक से बच्चे के रूप में है और ऐसे एक भयंकर कार्य कर रहे हैं जैसे बड़े असुर का वध करना, लेकिन ये रसाभास नहीं है, जैसे हम आगे चल के देखेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विमोहित किया, जबकि ब्रह्मा जी कृष्ण को मोहित करना चाहते थे, और उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने अनगिनत चतुर्भुज रूप अपने ही शरीर से विस्तार किए, तो ब्रह्मा जी का सर जो है वो चकरा गए, बल्कि चारों सर चकरा गए। और ये भी एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन है। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के श्रेष्ठ जीव माने जाते हैं, लेकिन वो भी भगवान कृष्ण के सामने ऐसे हैं कि मानो जुगनू सूरज के सामने। अगर जुगनू अपना प्रकाश सूरज को दिखाने जाए, जुगनू जानते हैं ना, फायरफ्लाई, अगर जुगनू सूरज के सामने आके अपना शरीर और विस्तार करे अपनी प्रकाश को दिखाने के लिए, तो सूरज तो हंसेगा ना। जुगनू को हम कब देख सकते हैं, रात में केवल, जब सूरज नहीं है, लेकिन जब सूरज की उपस्थिति है तो जुगनू की कोई कीमत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी जो हैं, हालांकि हमारी दृष्टि से इतने शक्तिशाली हैं, इतने सारे योग शक्तियां हैं ब्रह्मा जी के पास कि इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कृष्ण के सामने वो एक छोटे से जुगनू के बराबर है और कृष्ण सूर्य के समान है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा चलो मेरे भक्त ब्रह्मा जी थोड़े मोहित हो गए हैं, भ्रम में पड़ गए हैं, और मेरे सामने आकर ही वो ऐसा प्रदर्शन करना चाह रहा है योग का, तो भगवान ने अपनी ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए कंस के जेल में, कारागार में, तो तुरंत उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किया। अब आपने तो कहीं देखा नहीं होगा या सुना नहीं होगा कि किसी मैटरनिटी होम में, हॉस्पिटल में कुछ चार हाथों वाला बच्चा जन्म लिए है। ऐसे कभी कभी हम देखते हैं छह उंगली वाला बच्चा है, ऐसे कुछ हम देखते हैं कभी कभी, लेकिन चार हाथों से जन्म लेने वाला बच्चा शायद आज तक कहीं जन्म नहीं हुआ होगा, सिवाय मथुरा में, वो भी देवकी के गर्भ से। तो ये भी ऐश्वर्य का एक प्रदर्शन है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दर्शाया, दुर्योधन को भी दर्शाया। दुर्योधन को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसका दुर्भाग्य है, लेकिन अर्जुन ने देखा कि ये तो भगवान है। पहले तो मित्र समझ रहे थे अर्जुन, अब समझ लिया कि ये भगवान है। तो इस तरह भगवान अनेक तरीकों से अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करते हैं। और कोई उदाहरण दीजिए आप कि भगवान अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करते हैं। कंस का वध करना और यशोदा मैया को अपने मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाना, ये भी ऐश्वर्य के प्रदर्शन। गोवर्धन पर्वत को धारण करना, ये भी एक ऐश्वर्य है जो एक छोटा 7 साल का बच्चा नहीं कर सकता, बड़ा आदमी भी नहीं कर सकता। तो छोटे बच्चे की बात तो दूर है। और दामोदर लीला मतलब उसने इतने बड़े उखल खींचकर दो वृक्षों को गिरा दिया। जब वहां पर जो उपस्थित बच्चे थे उन्होंने बताया कि कृष्ण ने दोनों वृक्षों को गिराया, तो बड़े ब्रजवासियों ने सोचा कि ये बच्चे बड़बड़ा रहे हैं, विश्वास नहीं किया। और कोवल्या पीड़ हाथी को मारना, कंस चाणूर को मारना, कालिया का दमन करना, दावानल को पी जाना, तो ये सारी लीलाएं ऐश्वर्य का प्रदर्शन है। त्रिणावर्त का वध करना। तो प्रश्न ये आ सकता है, ये सब ऐश्वर्य 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 वृंदावन में हम देख रहे हैं, फिर माधुरी कहाँ? आप कहते हैं कि वृंदावन माधुरी का स्थान है, तो हम तो देखते हैं ये सब ऐश्वर्य ही है। भगवान अपने भगवत्ता को दिखा रहे हैं। द्वारका का निर्माण करना है, ये सब ऐश्वर्य का प्रदर्शन है। तो प्रश्न ये है कि फिर ये ऐश्वर्य कहाँ रहा? अगर वास्तव में माधुरी कहाँ रहा वृंदावन में? अगर सब जगह भगवान श्री कृष्ण ने ऐश्वर्य ही दिखाया वृंदावन में और अन्य जगह में, फिर हम वृंदावन को माधुर्य धाम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ऐश्वर्य के होते हुए भी वृंदावन के निवासियों के हृदय में जो भावना थी कि कृष्ण हमारे बच्चे हैं, कृष्ण हमारे मित्र हैं, कृष्ण हमारे प्रेमी हैं इत्यादि, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बात है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में कृष्ण ऐश्वर्य भाव को प्रकट नहीं करते हैं, करते हैं, परंतु वृंदावन के निवासियों के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि जो वृंदावन में नहीं है, भले वो मथुरा में हो, कुरुक्षेत्र में हो, हस्तिनापुर में हो, द्वारका में हो, वैकुंठ में हो, जब उनके सामने ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है तो उनके भक्ति भाव में थोड़ा घटन हो जाता है, उस निकटता में, उस मिठास में थोड़ा मिश्रण आ जाता है ऐश्वर्य का। उदाहरणार्थ जब कृष्ण ने कंस का वध किया मथुरा में, तो वसुदेव उनके सामने आए और वसुदेव को बहुत आश्चर्य हो गया था कि मेरे जो छोटे बच्चे हैं इन्होंने कंस जैसे राक्षस का वध किया, साथ साथ चाणूर मुष्टिक और ऐसे मल योद्धाओं का वध किया, कुवल्य पीड़ का वध किया सबके सामने केवल अपने हाथों से। उन्होंने सोचा ये तो मेरे बच्चे नहीं हो सकते, ये तो भगवान ही होंगे। जब कृष्ण बलराम कंस का वध करने के बाद, कृष्ण ही सबके पिता हैं, परंतु कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगा। अरे रे रे, तत्व बोल रहे हैं, सचमुच बोल रहे हैं, सच्ची बात बोल रहे हैं वसुदेव, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। कभी कभी हम कोई झूठ बात सुनकर हमें दुख लगता है, लेकिन वसुदेव सच बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए। क्यों नहीं प्रसन्न हुए, कोई बता सकते हैं? हाँ, उनको वो वात्सल्य चाहिए था, वात्सल्य प्रेम चाहिए था वसुदेव से, वो ये ऐश्वर्य भाव नहीं चाहिए था। लेकिन वसुदेव ने कहा आप तो मेरे बच्चे नहीं, आप तो भगवान है। तो कृष्ण ने सोचा अरे रे रे गड़बड़ हो गया। फिर से तुरंत वो वसुदेव के पास आए कि जैसे मानो वो आश्रय लेना चाहते हैं। फिर वसुदेव ने सोचा अरे हाँ ये तो मेरे बच्चे ही हैं, ठीक है ठीक है, आलिंगन कर लिया। फिर से निस्सहाय भाव से वसुदेव के सामने जब आए, फिर वसुदेव का मन पुनः बदल गया भगवान की कृपा से। लेकिन हम देख सकते हैं कि ऐश्वर्य मतलब भगवान का ज्ञान। जब भगवान अपने लीला करते समय ऐसे कोई अद्भुत कार्य करते हैं जो कि साधारण या असाधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है, और जब भक्त उस समय समझ लेता है कि ये भगवान है, और उस भगवत भावना से उसकी भक्ति भाव की जो अंदर निकटता है, मिठास है, उसमें घटन हो जाता है, तो ये ऐश्वर्य भाव है। बात स्पष्ट हो गई? जैसे वसुदेव का उदाहरण, और एक उदाहरण अर्जुन। अर्जुन ने जब विराट रूप देखा भगवान कृष्ण का, तो उस समय तुरंत क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन तो बिल्कुल चकाचौंध रह गए, अरे ये क्या है, ये तो मेरे मित्र थे, मेरे साथ बैठे थे, अचानक ये क्या भयंकर दृश्य है। फिर अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा भगवान कृष्ण से कि अरे मैंने बहुत गलती की, हे कृष्ण मुझे क्षमा कर देना, मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरे मित्र हो, कितनी बार मैंने तुमसे पीठ में थपथपाया मैंने, और तुम मेरे साथ में बैठे, हम एक साथ एक ही शैया पे सोते थे, कभी एक साथ बैठ के खाते थे, एक दूसरे को चुटकुले सुनाते थे, और साधारण मित्र की तरह एक भाई की तरह मैंने तुम्हें स्वीकार किया, लेकिन तुम तो परब्रह्म हो। तो उस समय जो अर्जुन के भाव में, हृदय में जो सख्य भाव था कि कृष्ण मेरे मित्र है, उसमें प्रदूषण आ गया। प्रदूषण मतलब क्या है? ठीक तरह से भौतिक प्रदूषण नहीं, लेकिन भाव का प्रदूषण आ गया, एक मिलावट हो गई, मिश्रण हो गया उसमें। किसका मिश्रण? ऐश्वर्य भाव का मिश्रण, भगवत ज्ञान का मिश्रण। लेकिन वृंदावन में भगवत ज्ञान हो भी, फिर भी भाव में फर्क नहीं पड़ता। ये अंतर है ब्रिजवासियों में और वसुदेव देवकी में, अर्जुन में, पांडवों में इत्यादि। हालांकि पांडव इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, लेकिन ब्रजवासी उनसे ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि हालांकि कृष्ण भगवान ने इतनी बार बारंबार ऐसे ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया, फिर भी ब्रजवासियों के मन में जो मिठास था, जो कृष्ण को अपना मानना, वो कम नहीं हुआ। तो माधुरी मतलब मीठापन, मिठास। जो निकटता आती है माधुरी भाव में, वो अन्यों में नहीं आती। तो भगवान के ऐसे मीठे मधुर लीलाओं का कोई वर्णन कीजिए। वृंदावन में आपने ऐश्वर्य की लीलाओं का वर्णन किया, अब थोड़े उदाहरण दीजिए मीठे लीलाओं का, मधुर लीलाओं का, जिसके लिए वृंदावन को माधुरी धाम कहते हैं। रास लीला और माखन चोरी लीला और ग्वाल बाल बालों के साथ भोजन करना, हाँ, तरह तरह के खेल खेलना, जैसे साधारण बच्चे खेलते गेंद के इत्यादि, हाँ, दूसरों के झूठा लेना, फिर अपनों को दूसरे उनका झूठा कुछ ले लेते थे, ये सब साधारण लीलाएं करना। जैसे जब कोई ग्वाल बाल छास पी रहा है, तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, छास पीकर उसके मुंह फूल गए हैं, गाल फूल गए हैं, तो कृष्ण भगवान ऐसे दो उंगली डालेंगे और उसके मुंह से जो पिचकारी निकलेगी अब उसका पान करेंगे। अब भगवान ऐसे करेंगे? कभी करते हैं, केवल वृंदावन में करते हैं। और क्या बताइए, गाय चराना और गोपियों से कर वसूल करना, ऐसे कितने सारे हैं उनका। हाँ, लेकिन फिर भी ये मथुरा भाव है, ये वृंदावन का भाव नहीं है। वस्त्र हरण कर लेना, माता यशोदा से डर जाना, जब माता यशोदा छड़ी लेकर आती हैं तो रोना शुरू कर देना। भगवान ऐसे रोते हैं कभी डर के मारे? लेकिन वृंदावन में रोते हैं, क्योंकि वृंदावन में कोई उनको भगवान नहीं मानता। जानते हैं कि वो भगवान है, अगर जानते हैं फिर भी मानते नहीं है। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे ना, कि जब कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों को और गौओं को लेकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में कौन कौन आए? ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, वरुण, वायु, सब लोग प्रणाम करने के लिए आए। सब स्तुति कर रहे हैं, वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, कोई पुरुष सूक्त बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ अर्पण कर रहे हैं, और कृष्ण आराम से स्वीकार कर रहे हैं बड़े आनंद से, झूमते झूमते। कृष्ण ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे उनके ऊपर, वो इस समय ग्वाल बाल है ना, तो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और अन्य ग्वाल बालों को बहुत मजा आ रहा है ये दृश्य को देखकर। और इस तरह से फिर बाद में वो नकल करते हैं देवी देवताओं की। वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि अरे ये भगवान है, हम कैसे कुश्ती कर सकते हैं इसके साथ, ऐसा नहीं सोचते। बल्कि जब उनको ये ज्ञान होता है कि मेरे मित्र जो है वो भगवान है, और देवी देवता भी यहां उसको प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके माधुर्य सख्य भाव में वृद्धि होती है, अर्जुन के और वसुदेव के भाव में कमी हो गई, घटन हो गई। लेकिन ब्रजवासियों के मन में जब भगवत ज्ञान आ भी जाता है भगवान कृष्ण के बारे में, तो उनका जो वात्सल्य भाव है, सख्य भाव है, मधुर भाव है, वो बढ़ जाता है। इसीलिए वृंदावन वृंदावन है, ये विशेष है। और गोपियां, गोपियां भी जानती थी, उन्होंने भी देखा, वो भी जगह जगह वर्णन करती हैं, परस्पर भी वो बोलती रहती हैं कि देखो देवी देवता आते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं कि आप परम सत्य हैं। गोपियां भी जानती हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में ये विचार उतनी ही तीव्रता से, बल्कि और भी तीव्रता से रहता है कि ये तो हमारे प्रेमी हैं, हम इनके दासी हैं, ये भावना जाती नहीं है। एक बार गोपियां जो हैं वो आपस में कहने लगी, देखो यही जो कृष्ण है ना, एक पिछले अवतार में इन्होंने बहुत क्रूरता से वानरों के राजा की हत्या की थी, वो भी ठीक तरह से नहीं, छल से। किसकी बात कर रहे हैं? जब प्रभु रामचंद्र ने वाली की हत्या की थी, और इतना ही नहीं, अपने पत्नी से, पत्नी के इतने वश में आ गए कि दूसरे एक स्त्री को उन्होंने बिल्कुल कुरूप कर दिया। सीता देवी के वश में आकर उन्होंने लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा के नाक और कान कटवा दिए। और इतना ही नहीं, वो आगे चल के भी उन्होंने इतने सारे कार्य किए, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे बलि महाराज के सामने गए, बलि महाराज ने उनको सब कुछ दे दिया, और ये दान स्वीकार करने के बाद क्या किया बलि महाराज को? बांध दिया रस्सी के मारे, मानो कि वो कोई साधारण ऐसे गुनहगार है। तो इसके लिए अगर ऐसे जब कार्य हम देखते हैं श्री कृष्ण के बारे में, तो फिर हमें लगता है कि ऐसे जो सांवले रंग के तरुण से हमें मित्रता छोड़ देनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति से मित्रता करने में कोई लाभ नहीं। हालांकि उसके बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते हम, फिर भी उसकी मित्रता अवश्य छोड़नी चाहिए। ये अपने भाव में बात कर रही है। तो जानते हैं कि ये पहले अवतार में राम थे, और फिर वामन देव के रूप में आए थे। कृष्ण के भगवत्ता का ज्ञान है उनको, लेकिन इस ज्ञान से उनके श्रृंगार रस में फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी वृद्धि होती है और भी तीव्र हो जाती है। तो इसका मतलब है कि मधुर रस में केवल भगवान कोई ऐसे मीठे कार्य करें, ऐसा नहीं है। अगर ऐश्वर्य का प्रदर्शन न हो वृंदावन में भी, तो एक साधारण बच्चे के तोतली बोली में और कृष्ण भगवान की तोतली बोली में अंतर क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि माधुर्य भाव मतलब वहां कोई ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, वहां केवल मीठे लीलाएं होनी चाहिए, ऐश्वर्य नहीं होना, तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं एक छोटा सा बच्चा जो है वो भी सबका मन मोहित कर लेता है अपने तोतली बोली से, हंसी से, अपने छोटे छोटे कार्यों से। तो अंतर यह है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में मधुर लीलाएं करते तो हैं, लेकिन साथ साथ ऐश्वर्य का प्रदर्शन भी करते हैं। और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते करते उनकी जो भक्ति भावना है, जो माधुर्य भावना है, वो बढ़ती रहती है। ये है वृंदावन। इसलिए वृंदावन के माधुर्य में और वैकुंठ के, मथुरा के, हस्तिनापुर के ऐश्वर्य भाव में ये अंतर है। इसलिए जो लीलाएं वृंदावन में कृष्ण करते हैं, वो लीलाएं कहीं भी और वो नहीं करते हैं। तो एक लीला का वर्णन करते हैं जबकि हम वृंदावन के मधुर भाव की बात कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि श्री कृष्ण माखन चोर हैं, मक्खन चोरी किया करते थे। नंद महाराज के भाई, कई भाई थे, उनमें से एक थे, उनका नाम था उपनंद, उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती गोपी। तो एक बार प्रभावती गोपी श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के विरुद्ध शिकायत करने के लिए माता यशोदा के पास आई और कहने लगी, हे यशोदा, देखो मैं कुछ कहना चाहती हूं तुमसे। कहो। देखो, तुम्हारा घर और मेरा घर एक ही है, मेरा घर तुम्हारा घर है, मेरे घर में जो भंडार है वो भी सब तुम्हारा ही है, और तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा, कोई फर्क नहीं। परंतु आपका बच्चा जो है वो वृंदावन के राजा का बच्चा है, इसलिए उसे सीखना चाहिए कि चोरी नहीं करे। मुझे ऐसी कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं कर रही हूं मैं, मुझे कोई दही की कमी नहीं, कोई ऐसे कुछ बात नहीं, जो चाहे वो तुम ले सकती हो मेरे घर से, ऐसे कोई बात नहीं, तो मेरे इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन ये जो चोरी करने की वृत्ति है, अब बचपन में अगर उसको हम ठीक नहीं करेंगे तो आगे चल के पता नहीं ये इसको ये वृत्ति कहां ले जाएगी। ये सही बात है ना, जब बच्चा जब बचपन में अगर चोरी करने लगे अगर उसको रोका नहीं जाए वहां पर, तो आगे चल के क्या होगा। तो प्रभावती गोपी इस भाव से बोलने लगी कि यशोदा जरा इसको ठीक करना तुम। तो माता यशोदा अच्छा कृष्ण की ओर देखने लगे, कृष्ण आए वहां पर छुप छुप के, तो देखा कि कृष्ण के पीताम्बर धोती में दही के धब्बे पड़े हुए हैं और उनके शरीर में जगह जगह है चिकनाहट है घी की। भगवान श्री कृष्ण घी दही बहुत चोरी करते थे ना, और फिर थोड़ा बहुत दही घी जो है इधर से भी थोड़ा निकल रहा है मुंह से, और लेकिन चेहरे पे जो भाव है ऐसे मासूम बच्चे का जो निर्दोष है जिसने कुछ नहीं किया है। तो कोई भी अगर ऐसे बच्चे का मुंह देखे तो कभी स्वप्न में भी सोच नहीं सकता है कि इतनी चोरी करता है। तो माता यशोदा श्री कृष्ण प्रभावती गोपी से कहने लगी कि हे प्रभावती, देखो मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा, तुमने भी स्वीकार किया, तो अगली बार अगर कृष्ण ऐसा करेगा तो उसे पकड़ के लाओ, मेरे सामने लाओ, और मैं उसे अच्छी डांट दूंगी ताकि अच्छी अगली बार ऐसे न करे। न जाने क्यों हमारे घर में इतना दही है, इतना घी है, इतना दूध है, सब कुछ है, हमारे तो लाखों लाखों गाय हैं, और इतना घी मक्खन दही वगैरह हमारे पास है जो कि घर में रखने के लिए जगह नहीं, और फिर भी ये बच्चा जो है ये दूसरों के घर में जाके दही मक्खन चोरी करता है। मैं आज तक समझ नहीं सकी हूं क्यों ऐसे वो करता है, लेकिन फिर भी अगर कृष्ण ऐसे अगली बार करे तो मेरे पास लेकर आना। तो प्रभावती गोपी खुश हो गई, आलिंगन किए माता यशोदा से, अनेक इधर उधर की बातें कर ली और वापस चली गई खुश होकर। उधर श्री कृष्ण ने भी बातें सुन ली थी, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो जाके अपने कई दिनों के बाद अपने सारे मित्रों को एकत्र किया, इधर आओ आज हमको आक्रमण करना है उस घर के ऊपर। तो प्रभावती गोपी के घर के पास आए जबकि कोई नहीं था, और दीवार के ऊपर से चढ़े मानो कि वो बिल्कुल निपुण चोर है। जैसे चोरों को वो कला होती है ना, कैसे दीवार चढ़ के जाना फिर घर के अंदर घुस जाना, वैसे श्री कृष्ण ने और अपने मित्रों को लेकर सब चढ़े दीवार के ऊपर, प्रांगण में आए, आहिस्ता आहिस्ता चल के देख रहे हैं कहां पर मक्खन छुपाए हुए, हाँ वहां पे। लेकिन प्रभावती गोपी चतुर थी, उन्होंने मटके में डाल के ऊपर छत से टंगाया हुआ था, लेकिन कृष्ण वो शेर तो ये सवा शेर, तो कृष्ण उखल वहां रख दिया, लेकिन उखल पे चढ़ने से भी पहुंच नहीं पा रहे थे। उखल के ऊपर और एक कुछ चीज था, स्टूल था, वो रख दिया, उसके ऊपर चढ़े फिर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो श्रीदामा सुबल सखा इत्यादि जो वहां पर थे उन्होंने सोचा अब आए हैं तो दही लेकर ही जाना है, तो उन्होंने थोड़े छड़ी लकड़ी लाए और बहुत मारा ऊपर, और फिर वो टूट गए सारे मटके, और जितने भी जब दही नीचे गिर गया सब आराम बड़े आनंद से खाने लगे, और जो बंदर आए उनको भी बांट दिया। और मटके फूटने की जो तोड़ने की जो आवाज आई तो प्रभावती गोपी जल्दी से भाग कर आई कि क्या हो रहा है, समझ लिया कि अब आए होंगे वो शैतान, तो पीछे से आके पकड़ लिया उनके कर कमलों को श्री कृष्ण के, पकड़ लिया तुमको अभी, अब चलो मेरे साथ। तो कृष्ण भगवान तो रोने लग गए उधर, जोर जोर से रोने लगे, बहुत नखरा किया उधर, नहीं नहीं ये नहीं, बहाना बना, ये नहीं वो नहीं। लेकिन प्रभावती ने, अभी बहुत सुने हैं तुम्हारे नखरे, बहुत देखे हैं मैंने, इस बार नहीं छोड़ेंगे, चलो मेरे साथ। तो दही इधर उधर सारे शरीर पर, और कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू, पकड़ के ले गई। मन ही मन कृष्ण भगवान बहुत डर रहे थे, अब क्या होगा, इस बार तो हम पकड़े गए, और अब मेरी माता यशोदा अगर मेरे को देखेंगी तो छड़ी से मारेंगी, तो मैं बहुत घबरा रहा हूं। तो जब तक प्रभावती गोपी जो है कृष्ण को लेकर माता यशोदा के घर में पहुंच गई, उस समय डर के मारे भगवान कृष्ण ने अपना मुंह जो है प्रभावती के कपड़े में, साड़ी में जो है ढका दिया है, क्योंकि डर रहे थे। तो प्रभावती गोपी यशोदा के सामने आई, नंद महाराज भी थे और अन्य गोप गोपियां भी वहां कुछ बातचीत कर रहे थे। यशोदा देखो, तुमने कहा ना कि अगली बार जब कृष्ण चोरी करेगा मक्खन का, लेकर आओ, तो अभी लाई हूं, तो मैंने पकड़ लिया उसके चोरी करते हुए पकड़ लिया। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने एक सुंदर लीला की, क्या लीला की, अपना वेश बदल लिया और प्रभावती गोपी के पुत्र का रूप धारण कर लिया। और माता यशोदा ने कहा, हे कृष्ण देखो इधर, तो मुंह उठाया तो कौन है, ये तो प्रभावती का पुत्र है, और प्रभावती तो नहीं नीचे देख रही, वो तो ऐसे खड़ी है। और फिर माता यशोदा रानी गोप गोपिया जो थे हंसने लगे, अरे प्रभावती जब मैंने कहा कि तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा है, इसका मतलब, और मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा, इसका मतलब ये नहीं कि जब तुम्हारा बच्चा कोई हरकत करे तो तुम मेरे पास लेकर आओ, अगर कृष्ण कुछ करे तो तुम उसको लेकर आना, क्या मतलब, देखो तुम्हारा बच्चा है, मेरा बच्चा। तो प्रभावती गोपी जो है इतनी भ्रमित हो गई, उस समय कुछ बोल ही नहीं पाई, बोलने को लिए कोई शक्ति नहीं, कोई बुद्धि काम नहीं कर रही, ये क्या हो गया। और सब लोग हंसने लगे, अभी ऐसी परिस्थिति की क्या किया जाए, लाल लाल चेहरा हो गया, जल्दी से अपने बच्चों को ले जाकर चलते गई, सर चकरा गया था आंगन में जाते, ये क्या हो गया। और अपने आप ही मन में अपनी परीक्षा कर रही थी, मैं के पागल हो गई कि क्या हो गया मेरे मन को, ये सब क्या हो गया। और ऐसे सोचते सोचते प्रभावती गोपी जो आगे चली, फिर कृष्ण की ओर देखते लगी, फिर अचानक कृष्ण ने अपना फिर से असली रूप धारण कर लिया और कहा, हे गोपी देखा, अब मेरे को ऐसे मेरे खिलाफ ऐसे शिकायत करोगी तो क्या परिणाम होता है, और इस बार तो ठीक है मैंने तुम्हारे बच्चे का रूप धारण किया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारे पति का रूप धारण करूंगा और फिर देखना कैसे तुम्हारा मुंह लाल लाल हो जाएगा सबके सामने। तो उस क्षण जब यह धमकी सुनी प्रभावती गोपी ने कृष्ण का हाथ छोड़ दिया, जैसे व्यक्ति गर्म लोहे को छोड़ देता है, और वहां से तुरंत भाग गई। और वहां पर जाकर वो ठंडे पानी से स्नान किया प्रभावती गोपी ने, और विष्णु तैल, विष्णु तेल लिया, सर पे मालिश किया, ब्राह्मणों को बुलाया, भाई यज्ञ करो, कुछ मंत्रों का उच्चारण करो, मैं शायद मैं पागल हो जा रही हूं, मेरा दिमाग ठंडा कर दो। और उसके बाद प्रभावती गोपी जो है कभी ने उसने शिकायत नहीं की। वास्तव में गोपियों को अच्छा लगता था जब कृष्ण आके चोरी करते थे, और वो जानबूझकर शिकायत करते थे ताकि ये रस बढ़े, लीला का रस बढ़े। तो ऐसी लीलाएं कभी वैकुंठ में नहीं होती हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण मधुर लीला ऐसे करने लगे, इसलिए वृंदावन विशेष है। वृंदावन चारिण क्रीड़ा, वृंदावन में चरते चरते कभी गोचर भूमि में, कभी वनों में, कभी अपने आंगन में, कभी दूसरे गोप गोपियों के घरों में, ऐसे उन्होंने लीलाएं किए। और ऐसे लीलाओं के बारे में स्मरण करते करते गोपियां तन्मयताम युयुहु तन्मय हो गई हैं। तो उनके पद चिन्हों में चलते हुए हमें भी इसी तरह से तन्मय होने का प्रयास करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो किसी के कोई प्रश्न है? हाँ जी, हरे कृष्ण
प्रभु जी।
हरे कृष्ण,
वृंदावन में एक माधुर्य रस था, रस तो नंद महाराज वात्सल्य रस में, यानी अपने पुत्र के रूप में उनको सहज प्रेम करते थे, वैसे ही गोप गोपियां उनको मित्र समझ के सहज प्रेम करते थे, क्या हमको भी सहज भाव में भगवान को लेना चाहिए?
नहीं, इस समय जब श्रवण दशा है उस चार्ट में है ना श्रवण दशा, तो हमें केवल दास्य भाव रखना है, हम गुरु और वैष्णवों के दास, ये भाव हमें रखना है। लेकिन इन सारे रसों के बारे में हमें सुनना है, श्रवण करना है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते थे, कैसे वृंदावन के भक्तों ने उनसे प्रेम किया। बल्कि वैकुंठ के भाव को भी हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, वैकुंठ जगत में भी कैसे भक्त प्रेम करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के पहले 9 स्कंध तो यही हैं, ध्रुव महाराज हैं, पृथु महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ये सब वैकुंठ भाव है। इसको भी अच्छी तरह से इसके बारे में सुनना जानना ये भी बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तो इन सब चीजों को, तत्वों को अच्छी तरह से जान लेंगे, हमारे हृदय में श्रवण करने की तीव्रता जब बढ़ेगी, वर्ण दशा आएगी, वर्ण दशा से स्मरण दशा आएगी, स्मरण दशा में आगे चलते चलते फिर जब हमारी स्वरूप सिद्धि, स्वरूप हमको ज्ञात हो जाएगा, उस समय की बात है। लेकिन इस समय हमें सारे रसों को जानने का प्रयास करना चाहिए, सारे लीलाओं को सुनना चाहिए, फिलॉसफी भी सुनना चाहिए, जानना चाहिए, हमारी साधना भी अच्छी तरह से करनी चाहिए। चतुरानंद ब्रह्मा जी का नाम है, तो पंचानन किन का नाम है? शिव जी का, शिव जी के पंचमुख और ब्रह्मा जी के चतुर्मुख। जब मन में बुरे विचार आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आपने फुटबॉल खेला है कभी? तो उस विचार के साथ फुटबॉल खेलना है, मतलब क्या करना है, निकाल देना है उसको मन से। कैसे निकाल सकते हैं? कृष्ण के बारे में स्मरण करके। जब कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करेंगे और ये एक आदत बन जाएगी तो फिर बुरे विचार नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो उनको जल्दी से हम निकाल पाएंगे। तो बुरे विचारों को मन से निकालने का उपाय एक ही है कि अच्छे विचारों से, कृष्णमय विचारों से भर दो मन को, फिर सब ठीक हो जाएगा।
हरे कृष्ण।
गुरु जी, इट इज सेड दैट द होली नेम रिवील्स द फॉर्म क्वालिटीज एंड लीलास ऑफ द लॉर्ड, सो हाउ डज दैट फिट इन दिस चार्ट? व्हाट इफ यू,
प्रश्न ये है कि ऐसे बताया गया है कि हरि नाम से भगवान के रूप, गुण, लीला इत्यादि प्रकट होते हैं, तो फिर ये इस चार्ट में कहां बैठता है? जैसे हमने बताया कि कलयुग के लिए युग धर्म है भगवान का नाम का आश्रय लेना, जप और संकीर्तन, इसके बारे में चर्चा की थी ना कि नाम, जप, संकीर्तन आदि करके और भगवान के बारे में श्रवण करके, बोल के, ये श्रवण दशा है। फिर श्रवण दशा से आगे खुद ब खुद अन्य सब भगवान के जो अस्तित्व के बातें हैं वो सब हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगी। नाम से, नाम लेते रहेंगे, नाम का आश्रय लेंगे तो धीरे धीरे से भगवान का रूप प्रकाशित हो जाएगा, फिर भगवान के गुण प्रकाशित होंगे और अंत में भगवान की लीला। तो ये क्रम आप याद में रखिए, आप याद रखिएगा, नाम, रूप, गुण, लीला, ये चार चीजें हैं। नाम से अन्य सारे तीन चीजें प्रकट हो जाती हैं, इसलिए कलयुग में नाम ही सब कुछ है। इसलिए हमको नाम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से जप कीर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसमें कीर्तन तो आया ही नहीं है, श्रवण ही आ गया।
नहीं, श्रवण दशा मतलब अगर हम श्रवण करेंगे तब कीर्तन कर पाएंगे। श्रवण दशा में कीर्तन भी आ गया क्योंकि हम नाम लेते हैं ना, श्रवण दशा में नाम लेना है तो वो तो कीर्तन ही है। हम जब जप करते हैं, हम संकीर्तन में आते हैं, वो सब कीर्तन है। और जब भगवान का गुणगान करते हैं वो भी कीर्तन है, कृष्ण के बारे में किसी को बोलते हैं वो कीर्तन है। आखिर जब हम कोई चीज, किसी चीज को श्रवण करते हैं तो उसके बारे में कीर्तन करेंगे ही। अगर हम केवल संसारी विषयों को सुन रहे हैं तो संसारी विषयों के बारे में बोलने के लिए बद्ध हो जाएंगे, निस्सहाय होकर हमें बोलना ही पड़ेगा क्योंकि वो केवल उसके बारे में हम सुनते आए हैं, केवल अंदर मन में नहीं रख सकते, उसको बाहर निकालना ही है। तो निकलेगा संसारी विषय के रूप में निकलेगा। तो जब हम भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं तो तो कीर्तन भी भगवान के बारे में ही करेंगे। और जब हम संकीर्तन में शामिल होते हैं, कोई एक भक्त कीर्तन कर रहे होते हैं, उनके बाद अन्य भक्त कीर्तन करते हैं, फिर वो भक्त करेंगे, फिर अन्य करते हैं। तो इस भागवत मार्ग में जो कि श्रवण का मार्ग है, कीर्तन का भी मार्ग है, बल्कि कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है भक्ति मार्ग में, ऐसे शास्त्रों का निष्कर्ष है और वैष्णव आचार्यों ने भी इसके लिए प्रमाण दिए हैं। तो हमारे जप, कीर्तन, कृष्ण का गुणगान सुनना इत्यादि, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये भक्तों के संग में होता है, इसलिए भक्तों का संग इतना महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें, ये सब कुछ आधारित है भक्तों के संग के ऊपर। इसलिए श्रवण भी आ गया, कीर्तन भी आ गया, फिर स्मरण आ गया।